नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतदिवसमृतं विविधभक्तमरासमालयं मुहुरोराशिकभुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टवयेष्वदेशो नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। एते चंसा कला पुंसं कृष्णस्तु भगवन् स्वयं इन्द्रियाकुलं लोकं हृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं। सम श्रीमद् भगवतम से पढ़ रहा है पंचम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 5 एवं 6। तो इस और आज भी श्री प्रभुपाद उसी तिथि पे 1967 हमारे आंदोलन की स्थापना की थी, तो इसलिए इसके बारे में भी 2-3 शब्द हम बताएंगे। तो मैं अभी सबसे पहले सर्वप्रथम ये श्लोक संस्कृत और हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। श्लोक 5 एवं 6 और तत्पर्य इसके बाद 2-3 शब्द बताएंगे। प्रत्याहाचलायम प्रतिहतादयस्त्रया आसन् इज्जा कुविधा सुनावा प्रतिघार्तु स्तुत्यम् अजाभुमानवजानिसातम्। अनुवाद। तो यहाँ पर इस अध्याय में राजप्रियवत के वंशों का यश वर्णन इसमें उल्लेख किया है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षा महाराज को बताता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रतिहा राज्य के बारे में बताता है। प्रतिहा की पत्नी सुवर्चाला के गर्भ से प्रतिहर्ता प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नमक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसमें कोई इसके कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए श्लोक 6 पढ़ रहा है। भूम्ना ऋषिकुल्यायम् उद्गितस्तथा प्रस्तावो देवकुल्यायम् प्रस्तावान् नियुत्सायम् हृदयाजा आसीद्विभोरत्यं च पृथुसेनस्तस्मान् नक्ता अकुत्यं यज्ञे नक्ता त्रुतिपुत्रो गायो राजर्षि प्रवार उदारश्रवम् अजायत सक्षत भगवतो विष्णु जगत रक्षिषय गृहित सत्वस्य कलत्मवत्वादि लक्षणेन महापुरुषत्वं प्राप्तः। अनुवाद। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्य के गर्भ से उद्गित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उदगीत की पत्नी देवकुलिया से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से प्रीतु शेन और प्रीतु शेन की पत्नी अकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी ध्रुति हुई जिसके गर्भ से गाय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गाय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वो राजार्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए है और वे सदैव दिव्य सात गुण में जिसे विशुद्ध सत्व कहता है विद्यमान रहता है। भगवान विष्णु के सक्षत अंश होने के कारण रजगाय भी विशुद्ध सत्व में असीम थे। इस कारण महाराज गाय दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तत्पर शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार है। इसमें से कुछ तो भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश है तो कुछ सीधे विस्तार है। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्न अंश जीव अथवा जीवात्माएं होती है। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्माएं विष्णु तत्व कहलाती है और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है और कभी कभी भक्त को महापौरुषिक कहा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मिरं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामयं ददति सावदन्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागनारघुनतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागनाललितश्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पञ्चकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च प्रीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम। हरे। तो यहाँ पर सुग्रीव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग महापुरुष के बाद के बारे में बताता है। सब यहाँ पर प्रियव्रत महाराज के वंश में उनको जन्म हुआ और जो इसको लेख है ये सब तो महात्मा है, लेकिन इनमें से भी कोई है जो भगवान के शक्तिवेश अवतार थे, जिसमें यहाँ पर उल्लेख किया है महाराज गाय के बारे में जो विख्यात थे। और इसमें श्लोक में तो शब्द उल्लेख किया है कि वे एक महापुरुष थे। और तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताता है कि मूल रूप कृष्ण ही है, जैसे श्रीमद् भागवतम में इसमें उल्लेख किया है सुग्रीव गोस्वामी जी ने प्रथम स्कंद में तृतीय अध्याय में 43 श्लोक संख्या में प्रसिद्ध श्लोक एते चमसा कलापुं सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार्व्याकुलं लोकं मृद्यन्ते युगे युगे कि बहुत सारे इस अध्याय में भी और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद इसमें भी और आगे भी तो अलग अलग अवतार के बारे में इसमें उल्लेख किया है। और यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार भी तो उल्लेख किया है कि इनमें से सबसे महान है भगवान श्री कृष्णा, जो वास्तव में सबके स्रोत है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य आचार्यों ने भी उल्लेख किया कि इसका श्लोक का दूसरा नाम भी दिया गया है परिभाषा सूत्र। तो सूत्र मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें उल्लेख किया है 2-3 शब्द में। और ये पूरे श्रीमद् भागवतम में वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं भगवान है श्री कृष्णा यशोदा नंदन गोपीनाथ। अलग अलग विष्णु मूर्तियां है, भगवान के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन सब कृष्ण के स्वांश या अंश है। एते चा अंशा या अंश के भी विस्तार रूप कला कलाता है ते चंसा कला पुंसम, लेकिन एक ही स्वयं भगवान है, आदि पुरुष है, महापुरुष है, पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है, ये भगवान श्री कृष्णा यशोदा नंदन गोपीनाथ है। और दूसरे सब भगवान के जो रूप है ये उनकी विस्तार रूप है, अंश है या अंश के विस्तार है कला है, ये प्रॉपर इसमें इंगित किया है। तत्पर्यम है और श्रीमद् भागवतम के अनुसार है और अलग अलग तो शास्त्र के अनुसार ये सब महापुरुष शुद्ध वैष्णव तो इंगित किया है। तो और जैसे कहा भी जाता है कि 3 महापुरुष है या पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, इसके बाद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णा है, और इसके बाद है प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन यह भी हमको समझना चाहिए कि रामचंद्र भगवान भी भगवान तो है, पुरुषोत्तम है, लेकिन ये भी कृष्णा की विस्तार रूप है। और लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ने हायान्या। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वगवान है, स्वयं भगवान है, लेकिन दूसरे कोई भगवान के रूप जो है ये स्वयं भगवान नहीं कहलाता है। सिर्फ कृष्ण चंद्र भगवान एवं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, हरिपुरुष है। गोविंद हरिपुरुषम तम हम बजामी, दूसरे सब भगवान के विस्तार रूप है, अंश है, या अंश की विस्तार है कला। और इसमें से भी यहाँ पर इसमें उल्लेख किया है जो भगवान के विभिन्न अंश तत्व है, जो जीवात्मा है, तो तीन तत्व या चार तत्व है। सबसे पहले विष्णु तत्व है, भगवान है, सारा ऐश्वर्य गुण, सारा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। इसमें तो मूल रूप कृष्ण है, दूसरे है विष्णु मूर्ति जो है, ये भी सर ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। इसके बाद है शक्ति तत्व है, मूल शक्ति है श्रीमती रानी, और दूसरे जो जिसे लक्ष्मी देवियां जो है, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, ये सब श्रीमती रानी के विस्तार रूप है। मूल शक्ति है श्रीमती रानी। इसके बाद तो शिव तत्व है, लाख तत्व है, तो भगवान के समान है लेकिन विष्णु तत्व नए है, इससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये भी उनके विशेष तत्व, विशेष तत्व है, ये जीव तत्व से श्रेष्ठ है। ये भी उल्लेख किया है ब्रह्म जी ब्रह्म समित्व में, जो जैसे दही और दूध है, तो दूध से दही बन जाता है, तो एक प्रकार से दही दूध से बिना है लेकिन बिना भी है, वैसे ही शिव जी कृष्ण से बिना है बिना भी है, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार रूप है भी, और सब जीवात्मा भी वास्तव में भगवान के विस्तार रूप है। मामे वंश जीवलोक के जीव भूत सनातन है, तो विभिन्नाक्ष तत्व है जीवात्मा है। और कभी कभी जब उनके भगवान की शक्ति इसमें आ जाता है जीवात्मा के, तो ये कहलाता है शक्ति अवेशवता, जैसे यहाँ पर गाया महाराज गाया, और प्रीतु महाराज, नरद मुनि, और हमारे भी तो श्रील प्रभुपाद वास्तव में शक्ति अवेशवतार है। इस कारण से क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना प्रचार नहीं कर सकता है, तो ये सब महापुरुष है। तो गाय एक महापुरुष थे, और तो लेकिन यहां पर भी फिर से समझना चाहिए कि एक तो विष्णु तत्व है, एक तो जीव तत्व है, जो भगवान की अवतार है, शक्तिवेश अवतार है, और महापुरुष भी, जैसे इसमें भी उल्लेख है ग्यारह स्कंद में, इसमें उल्लेख किया है करभजन मुनि महाराज ने भी कौप दाता है कि कलियुग के अवतार के बारे में, कृष्णावनम तिशा कृष्णम संग पंगस तपस्तम यज्ञ संकित बया जनते हैं सुमेद साहा, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहा है, उनके आदेश का पालन करता है, ये कृष्ण ही है, लेकिन उनके वर्ण जो है अकृष्ण है, गोरे है, गोरंगा, तो उनके प्रसाद के साथ भी, परिकार के साथ, प्रसाद के साथ यहाँ पर आया है को कि ये अस्त्र समान है, क्योंकि उनके पास तो आध्यात्मिक शक्ति भी थी और महाप्रभु के आदेश अनुसार प्रचार किया थे, उनके प्रसाद गान, उनके परिकार, नित्य सिद्ध परिकार के विस्तार रूप है। जहाँ पर भी जैसे नित्यानंद प्रभु वंदे गुरु मिश्र भक्तम ईशम ईशम अवतारकम तब प्रकाशम चक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम, कृष्ण चैतन्य कौन है, अकेले नहीं है, उनके साथ उनसे अभिन्न है और भिन्न भी है नित्यानंद प्रभु, उनके प्रकाश है। पहले तो जैसे कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण है, पहले उनके विस्तार रूप है बलराम, वैसे ही महाप्रभु है, पहले विस्तार है नित्यानंदा, इसके बाद शक्ति गदाधर पंडित है, शक्ति तत्व है, श्रीमती राधारानी वास्तव में है गदाधर पंडित। कृष्ण भी तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है लेकिन वास्तव में कृष्ण है, लेकिन श्रीमती राधारानी का भाव द्युति लेकर आया है। और इसके बाद उनके अवतार है, ये है अद्वैताचार्य। और इसमें भी यहाँ पर भक्त जो जीवात्मा है जो सर्वश्रेष्ठ है ये है श्रीवस पंडित, जीव शक्ति के है। और इसके बाद गुरु जान भी उल्लेख किया है, वंदे गुरुन गुरुन दीक्षा गुरु और शिक्ष गुरु इसमें सम्मिलित है। ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत है, ये सब महापुरुष है। और इसमें भी इस ग्यारहवें स्कंद भी उल्लेख किया है, इसके बाद इस श्लोक के बाद देयम सर्वाभिष्ट दोहम तीर्थस्पदम शिविरिं चुनितम शरण्यम प्रत्यर्थम प्रतिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कहता है यहाँ पर, क्योंकि वंदन कर रहा है, प्रणाम अर्पण करते हैं उनको महापुरुष को, श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं महापुरुष। देयम सदा हमेशा हम उनको स्मरण करना है। और इसके बाद अभिष्ट दो हम जो अभी जो हमारी अभिष्ट जो हमारी इच्छा है ये पूर्ण हो जाता है, विशेष करके आध्यात्मिक इच्छा जो होता है पूर्ण हो जाता है। अगर कोई किसी के पास भी भौतिक इच्छा भी हो, क्योंकि कृपा से ये भी अगर भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए अनुकूल है ये भी पूर्ण हो जाता है। तीर्थस्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम, इसलिए शिव जी विरिंची ब्रह्म जी उनकी शरण में है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में है, उनके स्मरण करते उनकी उपासना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी गुणगान कर रहा है। और जब उनके चरण कमल का स्मरण करता है जो नोक के समान है पोतम, तो ये भाव सागर पार कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ पर श्लोक में तो महापुरुष इसमें उल्लेख किया है। और इसके बाद भी एक और श्लोक है, और ये इस तात्पर्य में त्यक्त्यासुरुसा इसमें भी उल्लेख किया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, वास्तव में ये पर महापुरुष इसमें इंगित किया है यहाँ पर कर भजन मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु, इसके बाद कृष्ण चंद्र भगवान और रामचंद्र भगवान। श्लोक के अनुसार तीनों उनकी कृपा से ये भावसागर का पार कर सकते हैं। और वास्तव में शिव जी और ब्रह्म जी ये सब तो श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चंद्र भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की उपासना कर रहे हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनके स्मरण कर रहा है। और वैसा ही जो शुद्ध वैष्णव जो है, जैसे महाराज गाया और दूसरे महापुरुष जो होता है ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना कर रहा है, और कृष्ण चंद्र भगवान और रामचंद्र भगवान की उपासना कर रहा है। तो हम ये भी शास्त्र के अनुसार ये उल्लेख किया है कि हम ये सब इन महापुरुष के शरण में हमको उनके चरण कमलों में हमको आश्रय लेना है, हम उनके अनुगत्य में हमको चलना है, उनके उपदेश आदेश शिक्षा के अनुसार हमको चलना है। ऐसे करते हुए हमको आगे जा सकता है और परम पुरुष विजय विग्रह कि अच्छी तरह से उपासना कर रहा है। तो दो विग्रह है, एक है विषय विग्रह है या रद्य देव है, कृष्ण ही है। इसके बाद आश्रय विग्रह है जिनके पास कृष्ण प्रेम है, ये सर्वोत्तम तो है इसमें यहाँ पर श्रीमती राधारानी आश्रय विग्रह। लेकिन इसके बारे भी श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में विषय विग्रह और आश्रय विग्रह भी है, दोनों है, क्योंकि आराध्य देव है हमारे, क्योंकि कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। लेकिन फिर भी भक्ति के रूप में आया भी है हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना है, इसलिए आश्रय विग्रह भी है। और इसके बाद जो महापुरुष जो है, जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, जो गुरु जान है, ये भी आश्रय विग्रह है। ये सब महापुरुष है जो आगे है आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिक मार्ग में, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किया है, इसलिए दूसरे को कृष्णा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, जिसे वे आगे जा सकता है। तो हम सब यहाँ पर जो महापुरुष जो इस मुलेख किया श्रीमद् भगवतम, उनके भाव लेकर, उनकी शिक्षा लेकर हमको शरण भजन करना है, जिससे हम आगे जा सकता है। तो आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तिथि है। उसी दिन शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रिय भक्त है, कौर प्रिय जान है, शुद्ध वैष्णव है, महापुरुष है, मुकुंद प्रेष्ठ कृष्ण चंद्र भगवान के प्रिय भक्त है, आज उन्होंने ये आंदोलन स्थापित की थी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और ये हमारे पश्चिम देश के कैलेंडर के अनुसार ये दिन था 13 जुलाई 1967, और तिथि के अनुसार तो आज है ये श्रवण मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। तो उसी दिन तो उनके भक्त के साथ, तो उसी समय तो भक्त लोग तो ज्यादा भक्त लोग नहीं थे, और उनको भी ज्यादा नहीं मालूम था तो भगवान के बारे में, और ये भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में, प्रभुपाद कौन है, महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है, उनको ज्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि ये 1965 तो आए थे और इसके बाद तो प्रचार किए थे, और धीरे धीरे भक्त लोग आए थे, मतलब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से। और सबसे पहले तो महामंत्र उच्चारण, तो कीर्तन करते करते और प्रसाद पाते हुए तो आकृष्ट हो गए थे। और इसके बाद तो प्रभुपाद रोज, पहले रोज रोज प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन जब न्यूयॉर्क में थे, यहाँ पर 26th Avenue, 2nd Avenue, 26th, ये न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, बहुत यहाँ पर बहुत सारे लोग तो रहता है, न्यूयॉर्क में व्यापार है, कर रहे हैं, वहाँ पर बिजनेसमैन है, और यहाँ पर आपने एक दुकान खोल दिया था, और उन्होंने सोचे ये तो रजिस्टर करना है, स्थापना करना है, एक आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन स्थापित करना है। तो उसी समय ये भक्त लोग जिनके पास थे, ये तो उनकी इच्छा तो थी थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग आगे जाने के लिए। और उसी समय ये भी वहाँ पर ये बहुत सारे युवक थे जो भारतवास की ओर देखते थे, कोई भी वहाँ पर गए थे, और योगी, और कोई योगी लोग के पास जाते थे और गए थे, और मतलब ये क्योंकि इस भौतिक जगह में वे संतुष्ट नहीं थे, वहाँ पर सब कुछ था उनके पास, दानवीर परिवार में जन्मा, उनके जन्म हुआ और वहाँ पर सब कुछ तो था, आजकल भी तो लगभग सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ नहीं है, शांति नहीं है। जब भगवान केंद्र में नहीं है तो शांति नहीं मिल सकता है, पैसे भी हो, करोड़पति भी हो, लेकिन जब भगवान की कोई पूजा नहीं कर रहा है, उनके भजन नहीं कर रहा है, शांति नहीं मिल सकता है, कुछ सुख अनुभव कर सकता है, लेकिन सुख के बाद क्या आता है? दुख, सुख और दुख, सुख दुख आते चले जाता है, जैसे अलग अलग रीतियां हैं, आते हैं चले जाता है, लेकिन परम शांति नहीं मिल सकता है। कभी कभी ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, इसके बाद ये समस्या आ जाता है, वो समस्या आ जाता है, दुखी हो जाता है। अलग अलग क्लेश तो है, तीन प्रकार के क्लेश है, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक क्लेश, अपने शरीर से और दूसरे लोगों से। और ऐसे करते हुए तो शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है, इसलिए दूसरी चीज में, तो आध्यात्मिक चीज में उनके 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 खोज में थे ये कोई लोग। और तो भारतवर्ष के बारे में कुछ सुना था कि वहाँ पर कोई साधु लोग है, योगी है, और इससे इससे थोड़ा कृष्ण गए थे कोई लोग, और कोई भी वहाँ पर भी आए थे, कोई यहाँ के भारतवर्ष के दो चार लोग भी आए थे वहाँ पर साधु योगी, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं थे। लेकिन इसके बाद प्रभुपाद आए थे, और क्योंकि ये शुद्ध भक्त है श्री प्रभुपाद, और जब क्यों, और उन्होंने ये महामंत्र का कीर्तन करते थे न्यूयॉर्क में एक पार्क में, एक बगीचा में, वहाँ पर ये न्यूयॉर्क में शहर में, वहाँ पर भी जैसे दिल्ली भी अगर आप जाता है अलग अलग जगह पे, तो कोई पार्क है यहाँ पर लोग बैठ सकता है, पेड़ है, घास है, और बैठने की जगह भी है, और फाउंटेन भी हो सकता है, वहाँ पर पानी पी सकता है और आराम से बैठ सकता है, थोड़ा सा आराम से बैठ सकता है। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में भी है, तो वहाँ पर बैठ गया है और कीर्तन शुरू किया, और भक्त लोग तो वहाँ के लोग तो ये देखे तो वहाँ पर बैठ गए और सुनते थे इसके प्रभाव से महामंत्र के, जो कृष्ण के बिना रूप है। तो श्री कृष्ण, कृष्ण नाम अभिनय है, तो इससे कृष्ण हो गए थे, और प्रभुपाद उनके वहाँ पर दुकान में वहाँ पर गए थे, और तीन बार हफ्ते में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार भगवद गीता का प्रवचन करते थे शाम को, शाम के समय। तो पहले दो चार भक्त आते थे, इसके बाद छः, आठ, दस, ऐसे करके संख्या बढ़ गए। तो इसके बाद उन्होंने सोचा तो कि मुझे ये आंदोलन प्रोपर ने सोचा तो स्थापित करना है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन स्थापित करना है, क्योंकि यहाँ पर के जो मतलब एक दृष्टि से हम भक्त कहते हैं, लेकिन उनके हमको भी मालूम है भक्त क्या है वास्तव में, और कभी कभी हम भी सोचते हैं हम भक्त है, लेकिन कैसे भक्त हम है ये भी हमको देखना है, कैसे भक्त है। तीन प्रकार के भक्त तो है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, कहाँ पर है। और यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आए थे प्रभुपाद के पास, इसलिए हम कहता है तो, और उनके साथ रहते थे, इसके बाद तो भक्त बन गया एक प्रकार से लेकिन पक्के नहीं थे ये भक्त जो थे वहाँ पर, सब कच्चे थे भक्त। अभी तो 40 साल के बाद तो पक्का हो गया है, जैसे पैर पे जो फाल जो है कुछ समय के लिए के बाद तो पक्का हो जाता है, स्वाभाविक है। तो उसी समय कच्चे थे सब, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। तो वैदिक संस्कृति के बारे में, वैष्णव संस्कृति के बारे में, तो प्रोपच प्रवचन करते थे, और धीरे धीरे भक्त को कुछ तो ज्ञान प्राप्त किया। और तो इसके बाद एक दिन तो प्रोपच ने बोला हम, और वहाँ पर एक वकील भी था, और प्रभुपाद उनसे बात किए थे और उनसे भी पूछा कि कैसे करेंगे स्थापित करने के लिए एक आंदोलन. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं सहायक दे दूंगा और कर देंगे. और उनकी सहायता से तो ये आंदोलन भी रजिस्टर किया था सरकार के साथ. और ये 11 जुलाई था, प्रभुपाद प्रवचन किए थे. प्रवचन के बाद ये क्या था उनका नाम, स्टीवन गोल्डस्मिथ उनका नाम था वकील, ये उठ गया और बोला प्रभुपाद से बात नहीं किया था पहले, ऐसा अचानक तो उठ गया और उन्होंने बोला कि अभी आप सब यहाँ पर भक्त लोग जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपके सिग्नेचर चाहिए हमको, क्योंकि अभी हम एक आंदोलन स्थापित कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है. और तो प्रभुपाद भी तो तैयार था. और 11 तारीख था जुलाई, तो परसों तो स्थापित करेंगे उन्होंने बोला. तो भक्त लोग वहाँ पर सरल भक्त थे और बोले ठीक है स्वामी जी, प्रभुपाद उसी समय नए प्रभुपाद को नहीं, तो प्रभुपाद नहीं कहते थे प्रभुपाद को, लेकिन स्वामी जी बोलते थे, पुकारते थे. तो उन्होंने सोचा स्वामी जी की सहायक तो देना है, ठीक है कर देंगे, सिग्नेचर दे देंगे. और पैसे पहले साल के तो नियम के अनुसार 3 भक्त लोग थे जो इसमें एक कमिटी बनाए थे, इसमें थोड़ा सा आंदोलन के देखभाल करने के लिए एक साजीव भी होने, एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, साजीव होने चाहिए, तीसरा आदमी भी होना चाहिए. तो पहले 3 भक्त के सिग्नेचर लेने ले लिया था पहले साल के लिए, 3 और भक्त द्वितीय साल के लिए, और 3 और भक्त के तृतीय साल के लिए. तो ये चलाने के लिए आंदोलन के लिए वो प्रभुपाद तो मुख्य थे, लेकिन फिर भी इसके बाद 3 भक्त लोग इसमें सम्मिलित थे, वो वकील भी इसमें सम्मिलित थे. और तो 13 तारीख स्थापित किया थे. और इसके बाद भी तो जब तो कोई आंदोलन स्थापित कर रहा है तो इसमें भी उल्लेख करना है कि क्यों स्थापित कर रहा है, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन के, और नाम भी देना चाहिए. तो प्रभुपाद ने सुझाव दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको हरे कृष्णा. लेकिन कोई दूसरे जो जहां पर जो प्रभुपाद के पास तो यहां पर रहते थे, उन्होंने बोला तो कृष्णा कौन है किसी को नहीं मालूम है, इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नाम देना है. मतलब यह है अंतर्राष्ट्रीय संघ, कृष्ण भवनामृत संघ नहीं है, कृष्ण का शब्द नहीं लेना है, क्योंकि लोगों तो नहीं मालूम है कृष्ण कौन है क्या है, इसलिए भगवान का नाम देना है. गॉड भगवान मतलब भगवद अमृत, मतलब कृष्ण भवनामृत या भगवान अमृत संघ कृष्णा. सो कृष्ण कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस. तो प्रभुपाद ने मना किया है नहीं कृष्ण नाम होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है तो कि कृष्णा के नाम के प्रभाव तो होगा इसमें. और संक्षेप में तो इस्कॉन बन गया, इसमें भी तो उल्लेख किया भी था, तो इस कागज में भी पूरा कागज इसमें था क्या क्या नियम है, और इसमें तो सबके सिग्नेचर था. इसमें भी उद्देश्य भी दिया था इसमें कि हमारे आंदोलन में क्या उद्देश्य है, इसे 7 उद्देश्य उल्लेख किया है. तो इसमें सबसे पहले उल्लेख किया है कि सबसे पहले कि इस भौतिक जगत में हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करना है. तो सिस्टमैटिक मतलब यह है कि अच्छा तरह से समझाने के लिए अलग अलग केंद्र स्थापित करना है. भूपत के उद्देश्य ये था वास्तव में, लेकिन संक्षेप में बताया है सिस्टमैटिकली. इसके बाद उन्होंने भी तो हमारी तो शरण भक्ति के नियम दिया तो है, और इसके बाद जैसे शरण भक्ति की शुभ मंगलातिक जाना है, इसके बाद जाप करना है, ये नित्यम वगैरह सेवा स्थापित किया है, ये मतलब ये सिस्टमैटिक करना है, नियमित रूप से ये स्थापित करना है कि क्या करना है, इसके बाद इसका प्रचार करना है, वितरण करना है। ये पूरे वास्तव में पूरे विश्व में इसका वितरण करना है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी संघ, सिर्फ एक सिर्फ अमेरिका लेके नहीं था लेकिन पूरे विश्व के लिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसमें उल्लेख किया है कि लोग कैसे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकता है, और इसका फलस्वरूप क्या है कि जो भौतिक जगत के जो कृत्रिम जीवन के जो होता है, जिसका फलस्वरूप है कि लोग का अच्छे तरह से मतलब नहीं रहता है और दुखी है, तो जिससे वे समझ सकता है कि कैसे रह सकते इस भौतिक जगत में और आगे जा सकता है, और शांतिपूर्वक, फिर से यहाँ पर शांति के शब्द भी उल्लेख किया है, जिससे शांतिपूर्वक इस भौतिक जगत में रह सकता है, और जैसे इस भौतिक जगत में भी यूनाइटेड नेशन है, तो एक संघ है, और इसका यहाँ पर प्रयास अलग अलग सरकार के कि शांतिपूर्वक रह सकता है पूरे विश्व में, सब देश और जो होता है शांतिपूर्वक रहता है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस का एक संघ है यूएन। लेकिन शांति तो कैसा है यहाँ पर इस भौतिक जगत में, शांति नहीं है, लेकिन इसमें इस पहले भी उद्देश्य में इसमें भी शांतिपूर्वक रह सकता है, साथ ही साथ रहते हुए अलग अलग जो देश जो है इसमें पहले उद्देश्य में तो उल्लेख किया है। और इसके बाद द्वितीय में कहता है ये कि कृष्ण का इसमें शब्द उल्लेख किया है कि कृष्ण भावना का वितरण हमको करना है, जैसे शास्त्र में उल्लेख किया है, जैसे भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम, शास्त्र के अनुसार ये कृष्ण भावना का वितरण करना है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, कृष्ण भावना का वितरण करना है, क्योंकि कृष्ण तो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, हमारे इष्ट देव है, आराध्य देव है, लेकिन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और तीसरा है कि तीसरा देश है कि जिससे लोग इस आंदोलन में आ सकता है और रह सकता है, और क्योंकि उनको तो मालूम था, इसे तो स्थापित किया है कि बाहर अगर कोई बाहर रहता है और मंदिर में नहीं जाता है तो आगे जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आंदोलन स्थापित किया है जिससे लोग आ सकता है, रह सकता है, और शरण भक्ति के अनुसार तो शरण भजन कर सकता है, इसमें ये उल्लेख किया है, जिसे इस आंदोलन में रह सकता है और आपस में कृष्ण के बारे में बता सकता है, और इसके बाद भी जिससे लोगों को भी बता सकता है कि वास्तव में, और समझा सकता है कि जो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है अपितु भगवान के अंश है, कि हम शरीर नहीं है अपितु भगवान के अंश है, इसका ज्ञान का वितरण करना है। इसके बाद चौथा उद्देश्य है कि यह भी महत्वपूर्ण है, जो सब उद्देश्य जो उन्होंने यहां पर उल्लेख किया है, जो पॉइंट जो उल्लेख किया बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा जो है तो कि सबको बताना है कि ये हमको ये हरिनाम संकीर्तन स्थापित करना है इस भौतिक जगत में, और ऐसे करते हुए कृष्ण भगवान के नाम ऐसे करते हुए इसका प्रचार होता है संकीर्तन के माध्यम से। और इसलिए उन्होंने भी तो वहाँ पर स्थापित किया पश्चिम देश में, तो जब उनके काफ़ी भक्त लोग के वहाँ पर मंदिर में आ गए थे तो उन्होंने ये शुरू किया था ये संकीर्तन। तो कम से कम 6-8 भक्त लोग संकीर्तन के लिए हरि नाम संकीर्तन के लिए शुरुआत में रोज रोज जाते थे कार्ताल और मृदंग लेकर। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार स्थापित करना है ये हरिनाम संकीर्तन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो नवद्वीप मायापुर में उन्होंने इसका शुरुआत किया था, शुभारंभ किया था ये हरिनाम संकीर्तन उन्होंने स्थापित किया था। दूसरे भक्त के साथ कीर्तन करना ये महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद पांचवा है कि हमारे भक्त के लिए अलग अलग मंदिर की स्थापना, विशेष करके ये पवित्र तीर्थ में स्थापित करने के लिए, और जिससे भक्त लोग भगवान की आराधना कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तो यहाँ पर ले किया है। और इसके मतलब हम देख सकते हैं कि भगवान तो तीन कल गया है, लेकिन भगवान की कृपा से भी तो भक्त लोग तो त्री कल गया है भविष्य में भी देख सकता है। और उन्होंने उसी समय भी उनको मालूम था कि मुझे वृंदावन धाम में और मायापुर धाम में मंदिर की स्थापना करना ही है, जिससे पश्चिम देश के भक्त यहाँ पर आ सकता है और भगवान की आराधना कर सकता है, भजन कर सकते धाम में। ईश्वर की कृपा से तो हम यहाँ पर तो है और भजन कर सकता, नहीं तो मुश्किल है, विशेष करके पश्चिम देश के भक्त के लिए। हिंदुस्तान के लिए कोई बार ना है, सब तो मंदिर जा सकता है, आश्रम में रह सकता है, लेकिन अगर कोई विदेशी है तो पहले देखता है कहाँ से है, ये कर पाएंगे भजन तो। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने स्थापित किया हमारे बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर, इसलिए हम अभी यहाँ पर रह सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर सकते, भजन कर सकते हैं, आगे जा सकता है। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते थे इसमें अगले उद्देश्य में क्या उद्देश्य है कि प्रभुपाद कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल विधि से रहना है लेकिन उच्च विचार होना चाहिए। तो ये वास्तव में साधु सरल विधि से रहता है। तो आजकल तो क्योंकि शहर में भी रहना है और आजकल तो भी कंप्यूटर भी है, मोबाइल है, इसलिए सब भक्त के पास भी, ब्रह्मचारी के पास भी कंप्यूटर है, मोबाइल है और एसी भी है, एयर कूलर है, सभी सब कुछ है। तो सरल विधि तो सा कम है आजकल, लेकिन फिर भी हमको मालूम होना चाहिए कि सरल विधि से तो रहने ही चाहिए। इसके बाद उच्च विचार हो सकता है, जब सरल स्वराब सरल स्वभाव है, सरल विधि से रहता है और अच्छे तरह से सरल व्यवहार होता है दूसरे के साथ, निष्कपट भाव से, तब अच्छे तरह से भगवान का स्मरण कर सकता है और आगे जा सकता है। इसलिए उल्लेख किया है कि सरल विधि से रहना है, स्वाभाविक रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं रहना है। इसलिए उन्होंने भी बोला था तो इसमें इंगित किया है कि वन आश्रम तो स्थापित करना है और सरल विधि से तो जैसे अलग अलग तो प्रोपद भी फार्म प्रोजेक्ट भी स्थापित किया है, तो अपना जमीन होना चाहिए और तो ये गाय का पालन पोषण करना है, इसके बाद जमीन का खेत का भी देखभाल करना, ऐसे करते हुए स्वतंत्र रूप से तो रहना चाहिए भी अच्छा था, अच्छा है। इसलिए हमारे भक्त लोग भी आजकल ये प्रयास कर रहे हैं जिससे हम स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, मतलब ये भौतिक जगत के दूसरे लोग जो कर्मी लोग जो भौतिकवादी से स्वतंत्र रहना से अच्छा रहता है। तो ऐसे करते हुए जो भगवान के भरोसे में है और सरल विधि से रहता है, अपना गेहूं जब ले सकता, अपना फल सब्जियां जब मिल सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है, ये अति उत्तम है। ऐसे करते हुए ये शरीर के लिए अच्छा है, भावना के लिए अच्छा है, जिससे हम अच्छे तरह से जप कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और इसके बाद सातवां उद्देश्य जिसमें ले किया है, इसके बाद यहां पर कि हमको जो इसमें भी उद्देश्य जो इसमें उल्लेख किया है पहले, और जैसे अलग अलग शास्त्र जो होता है और इसका भी अलग अलग किताब जो होता है इसका वितरण करना है, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रभुपद उल्लेख किया है कि हमारे आंदोलन के एक उद्देश्य है कि हमको अलग अलग किताब जो होते शास्त्र जो होता है जिसे प्रभुपद ने किया है, जैसे भगवद गीता और चतना, इसके बाद पूरा भागवतम चैतन्य चतमृत और दूसरे ग्रंथ पूर्वाचार्य के ग्रंथ चतना, इसके बाद इसका वितरण करना है, और जैसे अलग मैगजीन जैसे बैक टू गॉड हेड और जैसे भक्ति सिद्धांत ने भी प्रभुपद ने किया था, तो दैनिक उन्होंने भी किया था समाचार पत्र, आध्यात्मिक समाचार पत्र, इसका वितरण के लिए भी इस वास्तव में ये आंदोलन है। ये जो शास्त्र जो होता है जपने के लिए, इसके बाद इसके वितरण के लिए भी है। इसलिए प्रभुपद भी उन्होंने बोला था कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर साल हमारे मैराथन भी है एक महीने के लिए, पूरा दुनिया में भक्त लोग प्रयास करें ज्यादा संख्या से तो ये किताब का वितरण करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भक्त को लोगों को किताब मिलता है तो इसके बाद ये पढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम प्रचार कर रहा है तो लोग सुनता है लेकिन फिर से भूल जाता है, लेकिन अगर किताब है तो रोज रोज पढ़ सकता है, ऐसे करते हुए इसका स्मरण कर सकता है, और ऐसा करते हुए भी इसमें भी उल्लेख किया है कि कैसे भजन करना है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है, कैसे आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमको किताब का वितरण करना है। और हमने भी सुना है, देखा है कि बहुत सारे लोग भी कि किताब के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग भक्त से नहीं मिले थे लेकिन किताब मिल गया, इसमें भी पढ़ लिया और समझ लिया कि हमको महामंत्र जप करना है, ठाकुर जी की पूजा करना है, वैसे किया है बिना भक्त के संग से। क्योंकि वहां पर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य जो है ये बहुत लाभदायक है सबके लिए, और सरल विधि से उन्होंने तो प्रस्तुत किया है, तो उनकी हाइटू की कृपा से तो हम अभी आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि उसी दिन तो स्थापित किया ये आंदोलन, और अभी तो बहुत अच्छा तरह से फैल गया है, तो बहुत सारे मंदिर है पूरे विश्व में और केंद्र है जिससे ये कृष्ण भावना तो फैल गया है, जो वास्तव में भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। पृथ्वी त्याचे यतना ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरा विश्व में हर गांव में ये महामंत्र का कीर्तन लोग करेंगे। तो वास्तव में श्री प्रभुपाद की कृपा से ये विश्ववाणी पूर्ण हुई और हम उनकी कृपा से प्रभुपाद की कृपा से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। श्री प्रभुपाद की